जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 141। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य वासना का त्याग करता है, अर्थात इस अहंकार को कि मैं हूं त्याग करता है, तो आगे विश्व नहीं दिखाई देता, केवल निर्विकल्प ब्रह्म ही भासित होता है। उसके प्राण नहीं उड़ते, वही लीन हो जाते हैं, क्योंकि उसका चित्त अचित्त हो जाता है। जब तक अहंकार का संयोग है, तब तक विश्व भी चित्त में स्थित है। जैसे बीज में वृक्ष और तिलों में तेल होता है, वैसे ही उसके हृदय में विश्व स्थित है। जैसे मृत्तिका में बड़े छोटे बर्तन, लोहे में सुई और खड़ंग और बीज में वृक्ष भाव स्थित है, चैतन्य अथवा जड़ हो, वैसे ही यह संकल्प कलना में भेद है, स्वरूप से कुछ नहीं, और वैसे ही यह जगत भी है। हे रामचंद्र जी, विश्व संकल्प मात्र है, क्योंकि दूसरी अवस्था में इसका नाश हो जाता है। यह जागृत अवस्था जो तुमको भासित होती है मिथ्या है। जब स्वप्न देख पड़ता है तब जागृत नहीं रहती, जब जागृत आती है तब स्वप्न नष्ट हो जाता है, जब मृत्यु आती है तब सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाता है, और देश काल पदार्थ सहित वासना अनुसार और सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व ऐसा है जैसे स्वप्न न कर, जैसे संकल्प पूर्ण होते हैं वैसे ये सब संकल्प उड़ते फिरते हैं। कई सृष्टि परस्पर मिलती है, कई नहीं मिलती, परंतु सब संकल्प रूप है, भ्रम से और कावर भासित होता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा होता है और कोई छोटा, तो छोटे को बड़ा भासित होता है। जैसे हाथी के निकट और पशु तुच्छ लगते हैं और चींटी के निकट और सब बड़े लगते हैं, वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष है उसको बड़े पदार्थ और देश काल संयुक्त विश्व तुच्छ भासित होता है, और वह उन्हें असत्य जानता है। पर जो अज्ञानी है उसको संकल्प सृष्टि बड़ी होकर भासित होती है। जैसे पहाड़ बड़ा भी होता है, परंतु जिसकी दृष्टि से वह दूर है उसको महालघु और तुच्छ सा लगता है, और चींटी के निकट तुच्छ मृत्तिका का ढेला भी पहाड़ के समान है। वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यही जगत नहीं, इससे बड़ा जगत भी तुच्छ लगता है, पर अज्ञानी को तुच्छ भी बड़ा लगता है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे भ्रम से सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के प्रमाद से यह विश्व भासित होता है, पर आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा दोष से जीव अपने अंग भूल जाते हैं और जागने पर सब अंग देख पड़ते हैं, वैसे ही अविद्यारूपी निद्रा में सोया हुआ जीव जब जागता है तब उसे सब विश्व अपना रूप दिखाई देता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के विश्व को अलग ही देखता है, वैसे यह विश्व अपना रूप ही देख पड़ता है। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य निद्रा में होता है तब उसे शुभ अशुभ विश्व में राग द्वेष कुछ नहीं होता, और जब जागता है तब इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष होता है। इसी प्रकार जब तक विश्व में हेयोपादेय बुद्धि है तब तक वह सर्वज्ञ हो तो भी मूर्ख है। हे रामचंद्र जी, जब जड़ हो जाए तब कल्याण हो। जड़ होना यही है कि दृश्य से रहित आत्मा में स्थित हो। वह आत्मा चिन्मात्र है। जब तक आत्मा से भिन्न जो कुछ सत्य अथवा असत्य जानता है तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। जब सम्मित न फुरे तब स्वरूप का साक्षात्कार हो। इससे वासना का त्याग करो। यह स्थावर जंगम जगत जो तुमको दिखता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब तुम ऐसे निश्चय करोगे तब सब विवर्तों का अभाव हो जाएगा और आत्मपद ही शेष रहेगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जीव जो आपने कहा सो जीव का स्वरूप क्या है? वह आकार को कैसे ग्रहण करता है? उसका अधिष्ठान परमात्मा कैसे है? उसके रहने का स्थान कौन है? वह भी कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जीव शुद्ध परमात्म तत्व निर्विकल्प चिन्मात्र पद है। उसमें चैतन्य मुखत्व हुआ, अर्थात मैं हूं। ऐसे जो चित्त कला अज्ञान रूपी फुरी उसको देह का संबंध हुआ है, उसी का नाम जीव है। वह जीव न सूक्ष्म है न स्थूल है, न शून्य है न अशून्य है, न थोड़ा है न बहुत है, केवल शुद्ध आत्म तत्व मात्र है। वह न अणु है न स्थूल है, अनंत चैतन्य आकाश रूप है, उसी को जीव कहते हैं। स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वही है। अनुभव चैतन्य सर्वगत जीव है, उसमें वास्तव शब्द कोई नहीं, और जो कोई शब्द है सो प्रतियोगी से मिलकर हुआ है। जीव अद्वैत है, उसका प्रतियोगी कैसे हो? यह जीव का स्वरूप है। चैत्य के संयोग से जीव हुआ है, उसका अधिष्ठान चैतन्य आकाश निर्विकल्प चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व है। उसमें जो संवित फुरी है उसी का नाम जीव है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल और सबका बीज है, उसी को विराट कहते हैं। उसका शरीर मनोमय है। वह आदि परमात्म तत्व से फुरा है और अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात परिचिन्नता को नहीं प्राप्त हुआ। वह अपने को सबका आत्मा जानता है, इसका नाम विराट है। उसका प्रथम शरीर मनोमात्र और शुद्ध प्रकाश रूप राग द्वेष रूपी मल से रहित अनंत आत्मा है। वह मन कर्मों और देहों का बीज है, उसमें व्याप रहा है और सब जीवों का अधिष्ठाता है। उसी ने संकल्प से ये जीव रचे हैं और पंच ज्ञान इंद्रिया अहंकार मन और संकल्प ये आठों आकार ग्रहण किए हैं। परमार्थ रूप को छोड़ फुरने से जो आकार उत्पन्न हुए हैं उनको ग्रहण करने का नाम पुर्यष्टका है। फिर इन इंद्रियों के छिद्र रचे और स्थूल रूप रचकर उनमें आत्मा प्रतीत किया। जैसे जीव शयन काल में जागृत शरीर को त्याग कर स्वप्न शरीर अंगीकार करता है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र निर्विकार अद्वैत स्वरूप को त्याग कर उसने वासनामय शरीर अंगीकार किया है। पर वास्तव स्वरूप का त्याग नहीं किया और स्वरूप से नहीं गिरा। शुद्ध निर्विकल्प भाव को त्याग कर विराट भाव ग्रहण किया है। इसी प्रकार आगे उस पुरुष ने ज्ञान से चारों वेद रचे और नीति को निश्चित किया। नीति इसे कहते हैं कि यह पदार्थ ऐसे हो और इतने काल तक रहे। निदान यह रचना रची और जो जो संकल्प करता गया सो देश काल पदार्थ दिशा ब्रह्मांड सब होते गए। ईश्वर विराट आत्मा परमेश्वर इत्यादि सब जीव के नाम हैं, पर जीव का वासनामय स्वरूप झूठ नहीं। वासना के शरीर ग्रहण करने से वासना रूप कहा है, पर उसका वास्तव रूप शुद्ध निर्विकार और अद्वैत है और कभी स्वरूप से अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ। सदा ज्ञान रूप अद्वैत और परम शुद्ध है। उसको अपने चैतन्य स्वभाव से चैत्य का संयोग हुआ है, इसी से कहा कि उसका वपु वासना रूप है। उसी आदि जीव ने ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक देवता और दैत्य आकाश मध्यलोक पाताल और त्रिलोकी उत्पन्न हुई है। जैसे दीपक से दीपक जलता है और जल से जल होता है, वैसे ही सब विराट स्वरूप है। आकाश उस विराट का उदर है, समुद्र रुधिर है, नदियां नाड़ी है और दिशा वपु है। उसके उदर में सुमेरु पर्वत सहित कई ब्रह्मांड समाये रहते हैं। पवन उसका सिर है, उच्छ्वास पवन प्राणवायु है, पृथ्वी मांस है, सुमेरु आदि पर्वत हाथ है, तारे रोमावली है, सहस्त्र शीश नेत्र है, वह अनंत और अनादि है। चंद्रमा उसका कफ है जिससे अमृत स्रवता है और प्राणी उपजते हैं। सूर्य पित्त है जो सबको उत्पन्न करने वाला है और सब मन सब कर्मों और सब शरीरों का आदि बीज विराट है। हे रामचंद्र जी, जीव इस चित्त के संबंध से तुच्छ हुआ है, पर वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। जैसे महाकाश घट के संयोग से घटाकाश होता है, वैसे ही विराट परमात्मा ने फुरने से सृष्टि रची है और उसमें अहम प्रत्यय किया है, इससे तुच्छ हुआ है। वह इसको मिथ्या भ्रम हुआ है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, वैसे ही वह अपने को दृश्य देखता है। लघुता में भी आत्मा की अपेक्षा से है, दृश्य में विराट है और आत्मा में इसका अनुभव है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार उसने उपज कर सृष्टि रची है और एक विराट पुरुष ने आदि में निश्चय किया है, वैसे ही अब तक है। यह आप ही उपजा है और आप ही लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार आत्मा से विराट की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही सब जीवों की हुई है। यह सब विराट रूप है, परंतु जो स्वरूप से उपजकर दृश्य से तद्रूप हुए हैं और जिनको वास्तव स्वरूप भूल गया है, वे तुच्छ रूप जीव हुए, और जो स्वरूप से फूरकर स्वरूप से न गिरा और जिसे आगे अपना ही संकल्प रूप विश्व देखकर प्रमाद न हुआ, उसका नाम विराट आत्मा है। हे रामचंद्र जी, जीव चैतन्य और निराकार रूप है। इसको शरीर का संयोग कलना से हुआ है। यह जब अपने को दृश्य संयुक्त देखता है, तब महा आपदा को प्राप्त होता है, और जब द्वैत से रहित निर्विकल्प होकर देखता है, तब शुद्ध चैतन्य आत्मपद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह विराट सबको उत्पन्न करता है। ऐसे कई विराट आत्मपद से उदय हुए हैं, कई मिट गए हैं और कई आगे होंगे। जैसे समुद्र से कई तरंग बुलबुले उठते हैं और कई लीन होते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी समुद्र से कई विराट उठते हैं, कई लीन होते हैं और कई उपजेंगे। ऐसा परमात्मा सबका अधिष्ठान है और सबके भीतर बाहर पूर्ण ज्ञान स्वरूप व्याप्त है। ऐसा तुम्हारा अपना रूप अनुभव रूप है। हे रामचंद्र जी, इस संवेदन को त्याग कर देखो, वही परमात्मा स्वरूप है। यह जो कुछ तुमको भासित होता है, उसको विचार कर त्यागो। जब तुम इसका त्याग करोगे, तब तुम्हारा चिन्मात्र परम शुद्ध स्वरूप तुमको भासित होगा। उसके आगे चैतन्य ही आवरण रूप है। जैसे सूर्य के आगे बादलों का आवरण होता है, और जब तक बादल है, तब तक सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यों नहीं भासित होता, पर जब बादल दूर होते हैं, तब प्रकाश स्वच्छ दिखता है। वैसे ही जब वासना निवृत्त होवेगी, तब शुद्ध आत्मा ही प्रकाशमान होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह परमात्मा पुरुष स्फुरण से जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। स्फुरण में भी वही है, पर अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसी से दुख पाता है। जैसे पवन चलता है तो वही है, और जब ठहरता है तो भी वही है, दोनों में तुल्य है। वैसे ही आत्मा सर्वदा एक रस है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त हुआ। जीव प्रमाद से दृश्य की कल्पना करता है और अपने को दृश्य जानता है, इसी से दुख पाता है। पर जो इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे, तो दृश्य में भी अपना रूप भासित हो, और जो निसंकल्प हो, तो भी विश्व अपना रूप भासित हो। विश्व भी इसी का रूप है, परंतु विचार से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न वाले का रूप है, परंतु निद्रा दोष से वह नहीं जानता, और जब जागता है तब जानता है कि वह मैं ही था। वैसे ही यह प्रपंच सब तुम्हारा स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप में निरअहंकार स्थित होकर देखो तो कुछ नहीं बना। जो आत्मा से भिन्न तुम कुछ बनोगे तो प्रपंच विश्वभासित होगा, और जो आत्मस्वरूप में स्थित हो तो अपना ही रूप भासित होगा और प्रपंच का अभाव हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, शून्य अशून्य, जड़ चेतन, किंचन निष्किंचन, सत्य असत्य, सब आत्मा ही पूर्ण है, तब निषेध किसका कीजिए। हे राम जी, वह ऐसा अनुभव रूप है जिसमें सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, पर ऐसे आत्मा को मूर्ख लोग नहीं जानते। जैसे जन्म का अंधा मार्ग को नहीं जानता, वैसे ही महाअंध अज्ञानी जागती ज्योति आत्मा को नहीं जानते। जैसे उल्लू आदि उदय हुए सूर्य को नहीं जानते, वैसे ही वासना से घिरे हुए अपने को नहीं जान सकते। जैसे जाल में पक्षी फंसा होता है, वैसे ये जीव माया में फंसे हुए हैं। इसी का नाम बंधन है। वासना के वियोग का नाम मुक्ति है। हे रामचंद्र जी, विषमता से जीव संज्ञा हुई है, जब सम हुआ तब ब्रह्म है। वह ब्रह्म अहंकार को त्याग कर होता है। जैसे खप्पर के संयोग से घटाकाश कहलाता है, और जब खप्पर टूट जाता है तब महाकाश हो जाता है, वैसे ही जब अहंकार नष्ट होता है तब आत्मस्वरूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जीव एकदेशी हुआ है, जब परिच्छिन्नता का वियोग हो तब आत्मस्वरूप ही है। हे रामचंद्र जी, अपने वास्तव निर्गुण स्वरूप में गुणों का संयोग उपाधि से भासित होता है, और वही अनर्थ रूप है। जब निर्गुण और सगुण की गांठ टूटेगी तब अपना केवल अद्वैत तत्व आभासित होगा। वह अनामय और दुख से रहित है, सत असत से परे, ज्ञान रूप और आदि अंत से रहित है। उसके पाने से फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, और उसको जानने से फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। ऐसा जो उत्तम पद है उसको आत्मतत्व से प्राप्त होगे। हे रामचंद्र जी, यह तो ज्ञान तुमसे कहा है, उसका आश्रय लेकर तुम ज्ञानवान होना, ज्ञान बंध न होना। ज्ञान बंध से तो अज्ञानी भला है, क्योंकि अज्ञानी भी साधुओं के संग से सच्चास्त्रों को सुनने से ज्ञानवान होता है, पर ज्ञान बंध मुक्त नहीं होता। जैसे रोगी कहे कि मुझको कोई रोग नहीं है, मैं निरोग हूं, तो वह वैद्य की औषधि भी नहीं खाता, क्योंकि वह अपने को निरोग जानता है। वैसे ही जो ज्ञान बंध है वह संतों का संग और सच्चास्त्रों का श्रवण भी नहीं करता, इससे वह अंधतम को प्राप्त होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान और ज्ञान बंध का लक्षण क्या है, और ज्ञान बंध का फल क्या है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से श्रवण किए हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है और ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदा तृष्णा रखता है कि किसी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हो, ऐसा पुरुष ज्ञान बंध कहता है। वह बोधशिल्पी है जो कर्मफल के विचार से रहित है, अर्थात भला बुरा विचार नहीं करता और उन्हें करता है, और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है वह शास्त्र शिल्पी है और फल के लिए कर्म करता है। कोई ऐसा है कि अपने को शास्त्रोक्त उत्तम मानता है, शास्त्रों के बहुत प्रकार से अर्थ भी कहता है, पढ़ता और पढ़ाता भी है, पर विषयों से बंधा हुआ है और सदा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा पुरुष ज्ञान बंध है। इसी कारण वह अर्थ शिल्पी भी कहलाता है, अर्थात चितेरा करने को समर्थ है और धारण करने को समर्थ नहीं। हे राम जी, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति संसार मार्ग है और निवृत्ति आत्मज्ञान मार्ग है। जिस पुरुष ने निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है वह प्रवृत्ति मार्ग में अर्थात बहिर्मुख विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। इंद्रियों के विषयों की चाह करता और विषयों से उपरत नहीं होता एवं उनसे संतुष्ट होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह ज्ञान बंध कहलाता है।
हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति है, शांति है, शांति है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।